ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम सभी ब्राह्मण बच्चों को अपना बनाकर सबसे पहला टाइटल बाबा ने हम बच्चों को संगम युगी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण का टाइटल दिया है। भविष्य का टाइटल भी बाबा ने हम बच्चों को आज की मुरली में विशेष बाबा ने कहा कि तुम सब आत्माएं अभी कौन सा टाइटल ले रहे हो, सत्युगी टाइटल, विश्व महाराजन और विश्व महारानी। आज बाबा ने हम बच्चों को विशेष विष्णु चतुर्भुज बनाया। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम सदा स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो और स्वदर्शन चक्र वास्तव में किसके हाथ में दिखाते हैं, स्वदर्शन चक्र विष्णु के हाथ में दिखाते हैं, चतुर्भुज के हाथ में दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम सभी स्वदर्शन चक्रधारी बन करके विष्णु चतुर्भुज बन सकते हो। तो हम सबका जो विशेष लक्ष्य है कि हमें क्या बनना है, हम सभी बाबा के पास आते हैं, बाबा से परिचय होता है, बाबा के बनते हैं, तो बाबा हमेशा हम बच्चों को लक्ष्य देते हैं। और लक्ष्य इसीलिए दिया जाता है कि जो लक्ष्य होता है उस लक्ष्य के अनुसार फिर लक्षण भी आते हैं। जब तक लक्ष्य नहीं होता है तब तक वो लक्षण भी नहीं आते हैं। उसका हम सबने प्रैक्टिकल में उदाहरण देखा है कि हम सभी आत्माएं द्वापर युग से भक्ति करते रहे और भक्ति करते करते भक्ति में कोई लक्ष्य नहीं था और लक्ष्य न होने के कारण बस एक अंधश्रद्धा से भक्ति करते थे। तो उसका परिणाम जो है वो हम सबने देखा कि भक्ति की लेकिन जो हमें प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि भक्ति में हमें किसी ने लक्ष्य नहीं दिया। और बाबा ने हम बच्चों को आकर के पहले ही हमें लक्ष्य दिया कि तुम बच्चे अभी क्या बनने वाले हो। आज हम सब भी से पूछा जाता है आपका लक्ष्य क्या है, ब्रह्मा कुमारी का लक्ष्य क्या है, ब्राह्मण बने हो क्या लक्ष्य है, यहाँ किस लिए आए हो। तो हरेक बाबा का बच्चा अपना लक्ष्य सुनाता है। क्या कहते हैं कि हम सभी क्या बनेंगे, क्या बनेंगे? सभी लक्ष्मी नारायण है, सभी लक्ष्मी नारायण बनने का लक्ष्य सुनाते हैं। कोई राम सीता बनने का लक्ष्य सुनाते हैं, भले राम राज की महिमा गाते हैं, भाई राम राज्य हो लेकिन राम राज्य की महिमा गाते हुए भी लक्ष्य हम सबका क्या रहता है? क्या रहता है? लक्ष्मी नारायण बनने का, है ना? बाबा ने रामराज का अर्थ भी हम बच्चों को समझाया है। रामराज माना त्रेता वाला नहीं, रामराज अर्थात सत्युगी राज, गोल्डन दुनिया का राज्य, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जहां देवताएं, संपूर्ण देवताएं राज्य करते थे। तो बाबा ने हम सबको लक्ष्य बहुत सुंदर दिया और हम सभी बाबा के बच्चे उस लक्ष्य को लेकर के चल रहे। जैसे देखो, ट्रेन चलती है तो दो पटरी पर चलती है, है ना? अगर एक पर चलेगी तो चल नहीं सकती है। ऐसे ही हमारे ब्राह्मण जीवन के लिए भी, देवता बनने के लिए भी, बाबा के सपूत बच्चे बनने के लिए भी बाबा ने हम सबको विशेष जीवन के लिए दो लक्ष्य दिए हैं, पटरी दी है। जैसे पटरी पर गाड़ी स्मूथ चलती है, ऐसे ही हमारे ये ब्राह्मण जीवन की गाड़ी स्मूथ चले, उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को दो पटरियां दी हैं। एक है श्रीमत और दूसरी है क्या? दूसरी है दृढ़ता। तो श्रीमत और दृढ़ता, ये दोनों पटरियां हैं। श्रीमत की हमको नॉलेज है और अगर उसमें दृढ़ता नहीं है तो हम उस पर चल नहीं सकते हैं। तो दोनों चाहिए, श्रीमत भी चाहिए और दृढ़ता भी चाहिए। कोई भी कार्य जब इंसान करते हैं तो उस कार्य में सफल होने के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है। एक तो नॉलेज की आवश्यकता होती है और जो नॉलेज मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है, उस नॉलेज और मार्गदर्शन के आधार से उसके अंदर जितनी दृढ़ता होती है और जितनी दृढ़ता होती है उस आधार से वो प्रैक्टिकल में जीवन में चल सकते हैं। अगर दृढ़ता नहीं है तो कार्य नहीं कर सकते हैं। तो जीवन को चलाने के लिए हमें बाबा ने, हम ब्राह्मण बच्चों को बाबा ने दो बातें बताई, एक श्रीमत और दूसरी बाबा ने हम सबको दी है दृढ़ता। तो जितनी श्रीमत है उतनी ही दृढ़ता है। श्रीमत के आधार पर दृढ़ता आती है और दृढ़ता के आधार पर हम श्रीमत पर चल सकते हैं। जैसे आप देखो, आत्मा और शरीर, है ना? आत्मा के बिना शरीर नहीं चल सकता है और शरीर के बिना आत्मा नहीं चल सकती। तो दोनों आवश्यक है, शरीर भी चाहिए, आत्मा भी चाहिए। आत्मा है तो शरीर चल सकता है, शरीर है तो आत्मा कार्य कर सकती है। इसी प्रकार से बाबा की जो हमें श्रीमत है और वो श्रीमत के अंदर वो दृढ़ता है तो हम दृढ़ता के आधार से कार्य कर सकते हैं। तो प्यारे बाबा ने हम सभी बच्चों को, सबसे पहले हमें बाबा ने अपना बनाया है, है? और हम सभी अपने को क्या कहते हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। क्या टाइटल मिला? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। अब ब्राह्मण कौन से? आजकल ब्राह्मण भी दुनिया में बहुत है, है? ब्राह्मणों के लिए भी कहते हैं, एक है कुखवंशावली ब्राह्मण और एक है मुखवंशावली ब्राह्मण। भले कहते हैं दोनों प्रकार के ब्राह्मण हैं, लेकिन बाबा ने हमें बताया कि वो है कुख वंशावली ब्रह्म और हम सभी बाबा के बच्चे जो हैं वो क्या है, मुख वंशावली ब्राह्मण है। तो हम सभी मुख वंशावली, मुख से बाबा ने हम बच्चों को क्या किया, अपना बनाया। बाबा ने कहा कि तुम सब मेरे बच्चे हो और हम सब ने भी बाबा को क्या कहा, बाबा आप हमारे हो और हम आपके हैं। तो हम सभी क्या है, क्या है, हम सभी भगवान के बच्चे हैं, कहलाते हैं ब्रह्म भगवान के बच्चे। अपने को क्या कहलाते हैं, भगवान के बच्चे, और कहलाते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तो बाबा का बनने के बाद हम बच्चों को ये टाइटल मिलता है। तो इस टाइटल को लेकर के हम बच्चे अपने जीवन का पुरुषार्थ करते हैं। तो जो बाबा ने हम बच्चों को टाइटल दिया ब्रह्मा मुख वंशावली और भगवान के बच्चे, अब ये टाइटल लेकर के हम सबको बहुत खुशी भी होती है, नशा भी चढ़ता है, चढ़ता है नहीं चढ़ता है, कि भाई हम भगवान के बच्चे हैं, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, बाबा ने हम बच्चों को क्या किया है, ब्राह्मण बनाया है, तो हम ब्राह्मण हैं, तो खुशी होती है, नशा भी रहता है। लेकिन ब्राह्मण किसको कहा जाए, भगवान के बच्चे किसको कहा जाए, उसकी भी डेफिनेशन तो है ना, कि भाई भगवान के बच्चे किसको कहेंगे, भगवान के बच्चे की क्वालिफिकेशन क्या होगी। हम ब्राह्मण बने हैं तो ब्राह्मणों की क्वालिफिकेशन क्या होंगी, ब्राह्मणों की मर्यादाएं क्या होंगी। जब ब्राह्मण उन मर्यादाओं में और वो क्वालिफिकेशन में चलते हैं तभी वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर जीवन के अंदर मर्यादाएं नहीं है तो जीवन क्या हो जाता है, बेकार है। देखो लौकिक में भी मर्यादाएं होती है, लौकिक जीवन में भी चलते हैं तो जहां होते हैं उस अनुसार उनको मर्यादाओं के अनुसार चलना पड़ता है, और मर्यादाओं के में नहीं चलते हैं तो जीवन क्या हो जाता है। कोई भी कार्य सफल तब होता है जब उस कार्य को विधि से किया जाता है। अगर विधि से नहीं करते हैं तो सिद्धि मिलती है, नहीं मिलती है। तो विधि क्या है, विधि माना मर्यादाएं। वो मर्यादाएं क्या है, जिन मर्यादाओं के अंदर चल करके हम बाबा के सच्चे सच्चे ब्राह्मण और भगवान के बच्चे कहलाने के लायक बनते हैं। क्योंकि बाबा ने हम सबको पहले ही जीवन का लक्ष्य दिया और हम सब ने उस लक्ष्य को लेकर के आगे चल रहे हैं। क्या लक्ष्य दिया, कि भाई हमको देवता बनना है। तो देवता बनना है तो देवता बनने के लिए हमारे अंदर क्या चाहिए, दैवी गुण चाहिए ना। तो आज वो दैवी गुण है, हैं देवता जैसे दैवी गुण, भाई देवता में जैसे दैवी गुण कौन से चाहिए। देवताओं की महिमा हम सभी गाते हैं तो क्या महिमा गाते, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। 5 विशेषताएं बताते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कलाएं संपन्न, संपूर्ण पवित्र, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म है। तो जीवन के अंदर ये विशेषताओं को लाने के लिए हमें मर्यादाओं का पालन करना आवश्यक है। अगर मर्यादाओं पर नहीं चलते हैं तो जैसे मैंने कहा ना कि गाड़ी को चलाने के लिए 2 पटरियां चाहिए, वैसे ही जीवन को चलाने के लिए हमें मर्यादाएं चाहिए। और जितना हम मर्यादाओं के अंदर चलते हैं उतना हमारा जीवन सफल बनता है। मर्यादा के बिना जीवन सफल नहीं बन सकता है। तो मर्यादाएं क्या है? जैसे देखो, डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है दवाई लेने के लिए, तो डॉक्टर चेकअप करके उसको क्या करता है? दवाई तो देता है, बीमारी आपकी ये है और इस बीमारी की आपको ये दवाई है, वो दवाई तो देता है लेकिन साथ साथ परहेज भी सुनाता है। और परहेज जो बताता है उस परहेज को अगर पेशेंट पालन नहीं करता है तो क्या होगा? जो दवाई मिलती है उसका कोई असर नहीं होगा। तो दवाई का असर हो, बीमारी खत्म हो, उसके लिए उसको क्या दिया जाता है? हमेशा परहेज ही दी जाती है। और जब वो परहेज पर चलता है तभी दवाई का असर भी होता है। तो हम सभी आत्माएं भी क्या बन गए? आधा कल्प के रोगी बने, जिसमें दुख, अशांति, परेशानी, अपवित्रता, ये सब बीमारियां हमारे जीवन के अंदर आ गई। अब इन सबको खत्म करने के लिए आज मनुष्य क्या कहता है? जीवन में क्या चाहिए? शांति चाहिए, जीवन में सुख चाहिए, जीवन में चैन चाहिए, जीवन में पवित्रता चाहिए। तो ये सब मांगता है। तो ये जो हमारी मांग है उस मांग को बाबा ही आकर के पूरी करते हैं। और जब बाबा आकर पूरी करते हैं और बाबा हम बच्चों को दवाई देते हैं तो साथ साथ हम बच्चों को बाबा क्या करते हैं? परहेज भी बताते हैं। अब परहेज क्या है आप सभी जानते होंगे कि नहीं जानते हैं? सभी जानते हैं ना, हमको बाबा पढ़ा रहा है, हैं? तो ये पढ़ाई है और पढ़ाई की हमारी सब्जेक्ट भी है। ज्ञान की सब्जेक्ट कौन सी है? चार सब्जेक्ट है ना, ज्ञान है, योग है, धारणा है और सेवा है, हैं? तो जो चारों सब्जेक्ट में है तो उन चारों सब्जेक्ट के अंदर पास हमें होना है, तभी हम पास विद ऑनर बन सकेंगे। तो ओम शांति। तो बाबा की हम ब्राह्मण बच्चों के लिए विशेष नियम भी हैं और मर्यादाएं भी हैं। तो नियम और मर्यादाओं के ऊपर जब हम चलते हैं तभी हम ब्राह्मण जीवन को सफल बना सकते हैं। और जब ब्राह्मण जीवन हमारी सफल बनेगी तभी हम अपने लक्ष्य पर भी पहुंच सकते हैं। तो लक्ष्य पर पहुंचने के लिए अपने जीवन को हमें सफल बनाना है तो ब्राह्मण जीवन, सबसे बड़ी बात तो ये ब्राह्मण जीवन हमको किसने दी है? हम सभी क्या कहलाते हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है ना। तो ब्रह्मा बाप के, शिव बाप के हम मुख वंशावली बच्चे हैं और हम भगवान के बच्चे हैं, है? और भगवान के बच्चे होने के नाते हम भगवान के बच्चों के अंदर क्या क्या मर्यादाएं होनी चाहिए, नियम हमारे क्या होने चाहिए? मोटे रूप से तो बता दिए जाते हैं कि भाई जब हम बाबा के बनते हैं तो पहला नियम बताया जाता है। क्या बताया जाता है? भाई पवित्रता को जीवन में धारण करना है। दूसरा नियम बताया जाता है क्या? खान पान शुद्ध होना चाहिए। और तीसरा भी नियम बताया जाता है कि संग भी क्या होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए। तो ये नियम हमको बताए जाते हैं और साथ साथ फिर बाबा ने इन नियमों के ऊपर चलने के लिए, जब इन नियमों पर चलते हैं तो उस नियमों पर चलने के लिए, उसकी गहराई में जाने के लिए बाबा ने हम बच्चों को बहुत मर्यादाएं, समय प्रति समय हमें मर्यादाएं बताई जाती हैं। और जितना हम उन मर्यादाओं पर और नियमों पर हम चलते हैं, उतना ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जब तक हम नियम मर्यादाओं में नहीं चलेंगे तो हमारा जीवन सफल नहीं बन सकता है। तो हरेक चाहता है कि भाई हमारा जीवन क्या बने, सफल जीवन बने, श्रेष्ठ जीवन बने, देवता समान जीवन बने। तो वो जीवन प्राप्त करने के लिए अब उनकी विशेषताओं को, उनकी मर्यादाओं को हमें अपने जीवन में क्या करना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा। और जितना जितना हमारे जीवन के अंदर मर्यादाएं और नियम पक्के होते जाते हैं, उतना उतना हम अपने जीवन के अंदर आगे आगे बढ़ते जाते हैं। आगे बढ़ने का जो विशेष आगे बढ़ने की विधि है वो यही है कि जितना हम नियम मर्यादाओं के ऊपर चलते हैं उतना हम आगे बढ़ते हैं। कहां भी अगर कोई भी नियम मर्यादा का उल्लंघन होता है तो पुरुषार्थ क्या हो जाता है, है? क्या हो जाता है, ढीला हो जाता है। तो बाबा ने हमको नियम भी दिए, मर्यादाएं भी दी, हमारी दिनचर्या भी दी, है? कि भाई ब्राह्मणों की दिनचर्या क्या होनी चाहिए, ब्राह्मणों का खान पान क्या होना चाहिए, ब्राह्मणों का रहन सहन क्या होना चाहिए, ब्राह्मणों का संग कैसा होना चाहिए, वो सब बाबा हम बच्चों को, देखो समय प्रति समय हम बाबा की मुरली सुनते हैं और मुरली के अंदर बाबा हमें समय प्रति समय एक एक बात का इशारा देता है। तो सबसे पहले नियम मर्यादाओं में चलने के लिए हमें सबसे पहला बाबा की मुरली के ऊपर अटेंशन होना चाहिए। जितना हमारा मुरली के ऊपर अटेंशन होगा उतना ही हम नियम मर्यादाओं में चल सकेंगे। और मुरली पर अटेंशन क्यों, क्योंकि बाबा जैसा जैसा समय होता है वैसे वैसे समय अनुसार, जैसी जैसी परिस्थितियां होती हैं वैसी परिस्थितियों अनुसार बाबा हम बच्चों को मुरली के अंदर हमेशा डायरेक्शन देते हैं, सावधानियां देते हैं, समझ देते हैं, इशारा देते हैं। उस अनुसार अगर हम चलते हैं तो हमारा जीवन क्या बन जाता है, स्मूथ बन जाता है। तो सबसे पहले बाबा ने कहा ना, मैं तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाने, हमारा ज्ञान सब्जेक्ट पहला योग, दूसरा क्या, पढ़ाई, ज्ञान योग और धारणा। तो पहला ज्ञान का सब्जेक्ट है, ज्ञान होगा तो योग होगा, योग होगा तो ज्ञान आएगा। तो पहले पहले तो हम सबको ज्ञान ही मिलता है, समझ मिलती है। तो समझ किससे मिलती है हम बच्चों को, बाबा की मुरली के। तो जितना हमारा मुरली के ऊपर अटेंशन होता है उतना ही हमारा योग भी पावरफुल बन सकता है। अगर मुरली के ऊपर हमारा अटेंशन नहीं है तो हमारा योग भी पावरफुल नहीं बनेगा, क्योंकि मुरली के अंदर बाबा की हरेक प्रकार की समझ मिलती है, हरेक प्रकार की समझानी मिलती है, हरेक प्रकार का इशारा मिलता है। उस अनुसार हम जब चलते हैं तो हमारा योग भी क्या बन जाता है, स्मूथ बन जाता है, योग भी लगता है। तो बाबा की मुरली के ऊपर हमारा विशेष अटेंशन हो जाए। अभी कई लोग कहते हैं कि हम बाबा की मुरली तो रोज सुनते हैं, सुनते ही नहीं सुनते, लेकिन सुनते हैं। आजकल मुरली सुनने की विधि भी अलग हो गई है, है? क्या विधि हो गई है भाई, मुरली सुनते हैं। बाबा ने कहा मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए, हरेक ब्राह्मण कहते मुरली मिस नहीं करते, मुरली सुनते हैं, कोई क्लास में मुरली सुनने के लिए आते हैं, कोई मोबाइल में मुरली सुनते हैं, कोई यूट्यूब पर मुरली सुनते हैं, मुरली तो सुन लेते हैं, मुरली मिस नहीं करते हैं, लेकिन मिस नहीं करते हैं। लेकिन कोई भी कार्य है, उस कार्य को अगर विधि से किया जाता है तो सिद्धि मिलती है, अगर विधि से नहीं करते हैं तो सिद्धि मिलेगी? तो मुरली की विधि क्या है? बाबा ने मुरली की विधि क्या सुनाई है? बाबा पढ़ाने के लिए आता है, परम धाम से आता है, और आता है तो कहाँ आता है? बाबा कहाँ आता है? मधुबन में आता है। मुरली कहाँ बसती है? मधुबन में बसती है। बाबा की मुरली कहाँ जाती है? पहले सेंटर पर जाती है, जाती है कि नहीं जाती है? तो मुरली कहाँ सुननी है? कहाँ सुननी है? सेंटर पर या मोबाइल में? है मुरली मोबाइल में हम सुन सकते हैं, सुनते हैं, है? लेकिन संतुष्टि के लिए है। मुरली जो है, बाबा की मुरली जो है, वो हम बाबा के घर में विधि से मुरली सुनते हैं तो हमें सिद्धि मिलेगी। अगर विधि से मुरली नहीं सुनेंगे तो हमको सिद्धि नहीं मिलेगी। तो मुरली सुनने की विधि क्या है? हम अपनी बाबा की मुरली सुनने के लिए सेंटर पर जाते हैं, और सेंटर पर भी क्या करते हैं? डायरी पेन लेकर पढ़ाई के लिए जाते, स्कूल में जा कॉलेज में जाते हैं तो कैसे जाते हैं? उसकी भी मर्यादाएं होती है ना, भाई कॉलेज में जाने की ड्रेस होती है, हैं? साथ में डायरी पेन होता है तब जाते हैं ना। स्कूल में कॉलेज में मोबाइल चलता है? नहीं चलता ना, बाहर ही रख के आते हैं ना मोबाइल तो। तो यहाँ तो मोबाइल सब जगह चलता है, हाँ? आजकल मोबाइल में ही मुरली सुनते, तो वास्तव में ये मुरली मोबाइल में जो हम सुनते हैं उसका असर नहीं होता है। मेरे को एक बात याद आती है कि दादी जानकी जी हमेशा एक उदाहरण देते थे। दादी कहते थे कि बाबा की मुरली सुनने की जो विधि है वो विधि क्या है कि हम बाबा के घर में आए, अपनी ड्रेस पहन के आए, टाइम पर आकर मुरली सुने, विधि से मुरली सुने तो सिद्धि मिलेगी, बिना टाइम के मुरली सुनते हैं तो भी सिद्धि नहीं मिलती है। आप देखो, सुबह सुबह बाबा के घर में आते हैं, हाँ? तो हमें क्या मिलता है? ताजा ताजा फ्रेश भोजन मुरली मिलती है। अगर वो ही मुरली शाम को सुने, मान लिए आप देखें भोजन बहुत अच्छा बना है, बहुत फर्स्ट क्लास है, हैं? और आपने सुबह में खाया वो ही भोजन, फिर आप शाम को खाएंगे तो क्या होगा? है अच्छा, फर्स्ट क्लास है, हैं? बहुत अच्छा बना है, लेकिन वो ही भोजन अगर शाम को खाया जाएगा तो उसका असर क्या होगा? जो फ्रेश बना है उसका असर होता है, या जो शाम को खाया जाता है उसका असर होता है? शाम को खाने से क्या होता है? कोई हैवी भोजन आप शाम को खाएंगे तो क्या होगा? है हजम होगा? नहीं होगा ना। तो इसी प्रकार बाबा की मुरली जब हम फ्रेश होकर के बाबा की मुरली सुनते हैं, फ्रेश भोजन लेते हैं, तो उस मुरली का असर होता है। दूसरा क्या होता है? सुबह सुबह हमको बाबा की मुरली सुनते हैं, हम उस समय बाबा की याद में फ्रेश बाबा के घर में आते हैं और आकर के बाबा की मुरली सुनते हैं तो फ्रेश होते हैं। उस समय मुरली हमारी सीधी कहाँ जाती है? दिमाग में जाती है, है? और वो मुरली सारे दिन काम करती है, और वही मुरली हम रात्रि को सुनते हैं तो वो मुरली क्या करती है? रात को मुरली सुनी और सो गए तो मुरली नींद में चली जाती है, तो जीवन में तो नहीं आएगी ना। तो मुरली सुनने की विधि यह है कि हम सुबह सुबह में बाबा के घर में आकर के मुरली सुने। ये जो अभी साधन बने हैं वो किसके लिए बने हैं? वो किसके लिए बने? कोई इमरजेंसी जो नहीं आ सकते हैं उनके लिए बाबा ने साधन दिए है कि भाई चलो इमरजेंसी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए बाबा ने कहा अच्छा चलो भाई मोबाइल में पढ़ लो या फिर बाद में पढ़ लो। लेकिन वास्तव में विधि जो है वो बाबा की मुरली की विधि ये है कि हम बाबा के घर में जाकर के बाबा की मुरली सुने, वही मुरली हमको असर करती है, नहीं तो वो मुरली कहाँ ऊपर से चली जाती। मैं एक मुरली की बात आपको सुनाती हूँ। मैं एक बार दुबई गई थी, मुरली का महत्व आपको सुनाती। मैं दुबई गई, मैं वहां पर एक क्लास में एक मुरली सुनाई, और एक मेरा नियम है कि मैं कहां भी जाती हूं तो मैं अपनी मुरली साथ में लेके जाती हूं। जो मधुबन से मुरली आती है वो मुरली मैं हमेशा साथ में रखती हूं और लेके जाती हूं। तो मैंने क्लास में उसी मुरली को पढ़ के सुनाया सुनाया तो वहां की एक बहन थी ज्योति का बहन, मेरे को बोलती है दीदी ये मुरली आप मेरे को दे सकते हो। तो मैंने कहा क्यों? तो कहती नहीं दीदी मेरे को ये मुरली चाहिए। तो मैंने कहा तुमको ये मुरली, तुमको मुरली नहीं मिलती है क्या, आती नहीं है क्या? तो मेरे को कहती है दीदी मुरली तो आती है, हमारी मेल में मुरली आती है, हम वो मुरली निकालते हैं फिर पढ़ते हैं, लेकिन मधुबन की मुरली नहीं आती है। समझा? मधुबन की जो मुरली, बाबा के घर से जो मुरली आती है, उस मुरली में जो ताकत है, आप सोचो उस बहन को कितनी उसकी वैल्यू थी। तब मेरी बुद्धि में वो टच हुआ, मैंने कहा देखो इसको बाबा की मुरली की कितनी वैल्यू है कि बाबा के घर से जो ओरिजिनल मुरली आई है मुझे वही मुरली चाहिए। हमारे पास तो हम लोग मेल में आती है उसमें से निकालते हैं और फिर पढ़ते, तो वाया हो गई ना। और ये सिर्फ डायरेक्ट आई बाबा की मुरली। तो देखो बाबा के बच्चों को बाबा की मुरली की कितनी वैल्यू है। तब मुझे उस बात की इतनी खुशी हुई कि देखो बाबा की मुरली की भी कई कई बाबा के बच्चों को जिनको नहीं मिलती है उनको बाबा की मुरली की कितनी वैल्यू होती है। तो बाबा कहते हैं ये मुरली ही, जितना हमारा मुरली के ऊपर अटेंशन होता है और मुरली के ऊपर हम ध्यान देते हैं उतनी ही हमारी जो है क्या है ब्राह्मण जीवन की लाइफ स्मूथ चलती है। और जिनका मुरली के ऊपर अटेंशन नहीं होता उनका योग भी नहीं लगेगा और ना कोई धारणाएं भी होंगी। कोई कितना भी धारणा करने की कोशिश करे अगर मुरली नहीं है, रेगुलर क्लास नहीं है, पढ़ाई रेगुलर नहीं है, वो कोई धारणा नहीं कर सकते। हमारी दादियों ने क्या किया प्रैक्टिकल में हम देखते थे। हमारी बड़ी दीदी थी मनमोहिनी दीदी थी। दीदी जब ही बाबा के जाने के बाद दादी प्रकाशमणि और दीदी मनमोहिनी दोनों को बाबा ने निमित बनाया। दादी मुरली क्लास में सुनाती थी और दीदी मनमोहिनी डायरी पेन लेकर के आकर के दीदी सामने बैठती थी और बाबा की मुरली लिखती थी और लिख करके उसमें से प्रश्न उत्तर निकालती थी और वो प्रश्न उत्तर सारे दिन उसका मनन चिंतन कराती थी। दीदी कोई भी दीदी के पास जाता था तो दीदी हमेशा मुरली के पॉइंट ही सुनाती थी। आज बाबा ने ये सुनाया, आज बाबा ने ये सुनाया, आज बाबा ने ये सुनाया। जानकी दादी के पास आप जाएंगे तो दादी हमेशा क्या कहती थी, अच्छा सुनाओ चलो आज बाबा ने क्या सुनाया। माना सारा दिन ज्ञान योग ज्ञान या बाबा की मुरली के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं था। क्योंकि हमारा गायन ही है भाई, गोपियों का गायन क्या था, गोपियां किसके पीछे मस्तानी थी, मुरली के पीछे मस्तानी थी ना। तो गोपियां कौन है, हम ही तो गोपियां हैं। तो हम बाबा की मुरली के पीछे ऐसे मस्ताने हैं, ऐसी मस्ती चढ़ती है। जब तक मुरली की मस्ती नहीं चढ़ी है तब तक हमारा पुरुषार्थ नहीं हो सकता। तो हमें जो बाबा की पढ़ाई हमें बाबा पढ़ा रहा है, बाबा कई बार बोलता है बच्चे मैं तुम बच्चों को 5000 वर्ष के बाद आता हूं तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए। बाबा कैसे मिलता है, पढ़ाई से ही मिलता है ना। बाबा हम बच्चों को पढ़ाता है और उस पढ़ाई से ही हमारा जीवन बाबा बनाता है। तो पहला ज्ञान, जितना हमारा ज्ञान के ऊपर अटेंशन होगा, बाबा की मुरली के ऊपर अटेंशन होगा, उतना ही हमारा योग भी लगेगा। अगर मुरली के अटेंशन नहीं है तो फिर योग लगेगा क्या? योग लगेगा, दूसरी बातें चलते। अगर मुरली का मनन चिंतन चलता होगा तो बाबा मनन चिंतन ही हमें खुशी दिलाता है, मनन चिंतन ही मगन अवस्था बनाता है। अगर मनन चिंतन नहीं है तो मगन अवस्था नहीं बनेगी, और मगन अवस्था ही हमारा योग है। तो ज्ञान का मनन चिंतन जितना हम करेंगे उतना हमारा बाबा के साथ योग लगेगा। तो योग के ऊपर भी हमारा विशेष अटेंशन तभी जाएगा जब तक मुरली नहीं सुनेंगे, योग भी हमारा नहीं। देखो क्या विधि पहले रखी है ना, ये सबसे पहले क्लास ही होता है, क्लास के बाद उसके बाद और कारोबार चलता है। तो बाबा ने जो विधि रखी है उस विधि अनुसार हम चलते हैं। तो पहली विधि हमारी पढ़ाई, तो हमारा क्या अटेंशन हो चाहिए? पढ़ाई के ऊपर हमारा बहुत बहुत अटेंशन होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई का ही मनन चिंतन करते रहना चाहिए। जितना मनन चिंतन हमारा हम करते रहेंगे उतना हमारा योग भी पावरफुल बनता जाएगा। तो और योग पावरफुल बनेगा तो फिर हमारे जीवन के अंदर जो हम मर्यादाएं चाहते हैं, जो धारणाएं चाहते हैं, उन धारणाओं को हम अपने जीवन में ला सकेंगे। नहीं तो धारणा कैसे आएगी? आज बाबा ने कहा बच्चे किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख देना है। हम स्लोगन तो पढ़ लेते हैं, किसको दुख नहीं देना है, सुख देना है, सुख दो सुख लो बोलते हैं, लेकिन सुख दो सुख लेते हैं? सुख दे तो देते हैं लेकिन लेते हैं? सुख दो सुख लो, दुख न दो दुख न लो। तो सुख देना है तो कैसे देंगे? वो सुख की स्थिति हमारी जब बनेगी तब हम दूसरों को सुख भी दे सकेंगे। अगर हमारी स्थिति सुख की नहीं है तो हम कैसे दूसरों को सुख देंगे? तो कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आती है तो उस परिस्थिति को पार करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? शक्ति होनी चाहिए। और वो शक्ति हमें किससे मिलती है? ज्ञान और योग के आधार से। तो जितना हमारा ज्ञान और योग पक्का होगा उतनी हमारी धारणाएं भी पक्की होंगी, और जितनी हमारी धारणा पक्की होगी उतनी फिर हम सेवा भी कर सकेंगे। तो विशेष बाबा ने हम बच्चों को पढ़ाई के ऊपर भी विशेष अटेंशन दिया, और साथ साथ बाबा ने हम बच्चों को ब्राह्मण जीवन के लिए क्या चाहिए? प्योरिटी भी चाहिए। तो प्योरिटी है फर्स्ट। देखो बाबा ने पहले पहले कहा ना कि तुम भगवान के बच्चे हो, तो भगवान के बच्चे अर्थात पवित्र बनो और योगी बनो। पहले योगी बनो पवित्र बनो नहीं बोला, पहले क्या कहा? स्लोगन क्या है? पवित्र बनो और योगी बनो। तो पवित्रता को जीवन में हम जितना धारण करते जाएंगे उतना हम योगी जीवन भी मनाते जाएंगे। अब देखो पवित्र जीवन बाबा ने बनाई हमारी। कोई भी आज मनुष्य, साधु सन्यासी ऋषि मुनि, किस कोई भी पवित्रता को जीवन में ला सकता है? और लाया किसी ने? देखो मनुष्य जो है रोज गीता पढ़ते हैं, और गीता पढ़ते पढ़ते रोज बोलते काम महा शत्रु, काम महा शत्रु है गाते रहे, ऋषि मुनि महात्मा तपस्वी सब ने गाया, लेकिन काम महाशत्रु, उस शत्रु को किसने निकाला? उस शत्रु पर विजय किसने प्राप्त कराई? बाबा ने कराई, और सहज रीति कराई। क्यों सहज रीति कराई? क्योंकि पहले बाबा ने हम बच्चों को अपना बनाया। तो अपना बना करके बाबा ने हम सबके जीवन में पवित्रता को लाया। तो जितना हम अपने जीवन में पवित्रता को धारण करते जाएंगे उतना हमारा योगी जीवन बनता जाएगा। और पवित्रता को लाने के लिए भी हमें बाबा ने जो विशेष मुरली दी है, जो हमारी पढ़ाई पढ़ाई है, उस पढ़ाई के ऊपर जितना हमारा अटेंशन होगा उतना ही प्योरिटी भी हमारे जीवन के अंदर आती जाएंगी। और प्योरिटी को पालन करने के लिए बाबा कहता संग भी चाहिए, और साथ साथ प्योरिटी को जीवन में लाने के लिए बाबा ने हम बच्चों को, विशेष ब्राह्मण बच्चों को, भोजन के ऊपर भी विशेष अटेंशन खिंचवाया कि हम देवता बनने वाले हैं तो देवताओं का भोजन कैसा होना चाहिए। भाई देवताओं का भोजन कैसा होता है? सत्यु के भोजन की महिमा करते हैं ना, क्या महिमा गाते? सत्युग में क्या था? 36 प्रकार के भोजन थे, शुद्ध पवित्र भोजन था, 56 भोग थे। अब 56 भोग में क्या दिखाते हैं? 56 भोग दिखाते हैं ना, तो 56 भोग में क्या दिखाते हैं? कभी देखा है प्याज लहसुन बीड़ी सिगरेट कोई आता है उसमें? 56 भोग में आता है? जहाँ 56 भोग लगते हैं तो वहां क्या होता है? देखा है कभी मंदिर में 56 भोग का दर्शन किया है? किया तो होगा, कई मंदिरों में तो आजकल तो होते हैं 56 भोग के दर्शन होते हैं। उसमें क्या होता है? 56 भोग में शुद्ध पवित्र है, भगवान को भोग भी लगाते हैं तो भगवान को भी देसी घी का भोग खिलाते, कभी ऐसा वैसा नहीं खिलाते, 56 भोग शुद्ध स्वप्न बनाते हैं। तो बाबा हम बच्चों को भी कहते हैं कि हम ब्राह्मणों का भोजन भी क्या होना चाहिए? शुद्ध और पवित्र। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो अन्न का मन के ऊपर बहुत असर पड़ता है। बाबा ने हम बच्चों को भोग खिला खिला करके सारी भोगनाओं से दूर कर दिया। क्या देता है बाबा? अब मधुबन में आते हो तो सब क्या खाते हो? मधुबन में क्या मिलता है सबसे ज्यादा? टोली मिलती है ना, कहीं टोली मिलती है, जिसके पास भी जाते हो वहां क्या मिलता है? टोली मिलती है। ये टोली में क्या है? भाई बाबा की टोली में जादू है। क्यों जादू है? कि ये टोली शुद्ध और पवित्र है। किनके हाथ की बनी हुई टोली है और कौन दे रहा है, है ना? तो जैसे टोली का महत्व है ऐसे ब्रह्मा भोजन का भी महत्व है, ऐसे भोजन का भी महत्व है। तो हम ब्राह्मण बच्चों के लिए भोजन भी कौन सा चाहिए? पवित्र भोजन। तो जितना पवित्र भोजन हम खाते हैं उतना हमारी वृत्ति दृष्टि शुद्ध बनती जाती है, और जो अशुद्ध भोजन खाते हैं उनकी वृत्ति दृष्टि क्या रहती है? अशुद्ध रहती है। तो भोजन के ऊपर भी हमारा विशेष अटेंशन रहना चाहिए, और भोजन शुद्ध भी खाना चाहिए, और साथ साथ प्यारे बाबा को भोग लगा करके ही भोजन खाना चाहिए। माताएं भोग लगा कर खाती हैं, ये भी मर्यादा है कि भगवान को भोग लगा करके हमें ब्रह्मा भोजन स्वीकार करना चाहिए। क्यों भगवान को खिलाना चाहिए? वो क्या भूखा है? भगवान भूखा है इसलिए खिलाते हैं? शिव बाबा भोग खाता है? नहीं खाता, तो हम भोग क्यों लगाते? भोग क्यों लगाते हैं? है भगवान को भोग लगाने से भोग शुद्ध बन जाता है इसलिए, है शुद्ध बन जाता है इसलिए। भगवान को भोग लगाते हैं तो भोजन शुद्ध तो बनता है, पवित्र तो बनता है, प्रसाद बन जाता है। प्रसाद खा करके, कहते हैं ना, भोग खा करके भोगना खत्म हो जाती, प्रसाद खा के कालकंटक दूर हो जाता है। तो बाबा हम बच्चों को रोज भोग खिलाता है, और हम बाबा के बच्चे रोज भोग खाते हैं और बाबा को खिला करके खाते हैं, और बाबा को खिलाकर खाएंगे तो वो भोग क्या बन जाएगा? प्रसाद बन जाए। और जितना हम प्रसाद खाते जाते हैं तो अन्न का मन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो शुद्ध अन्न रोज हम बाबा के बच्चे भोग खाएंगे तो हमारी हर प्रकार की भावना जो भी भोगना है वो खत्म होती जाएंगी। तो बाबा की याद का ब्रह्मा भोजन हमें रोज स्वीकार करना है। और ब्रह्मा भोजन कब बनता है? जब हम बाबा को भोग स्वीकार कराते। जब तक हम बाबा को भोग स्वीकार नहीं कराएंगे तो वो ब्रह्मा भोजन नहीं बनेगा। तो सभी को, बाबा के बच्चों को, जो भी माताएं हैं, परिवार में रहते हैं, तो बाबा को भोग स्वीकार कराना ये भी हमारी एक मर्यादा है, ये भी हमारा एक नियम है। इस नियम को हम जितना पालन करते हैं उतना हमारे अंदर बहुत शक्ति मिलती है। क्योंकि जैसे भोजन के लिए कहते हैं ना, भोजन खाने से शक्ति मिलती है, तो शुद्ध भोजन खाने से हम आत्माओं के अंदर वो शक्ति और पावर आती है। देखो प्रसाद के लिए कितनी वैल्यू होती है, इतना छोटा सा भी कहीं भी होगा ना, इतना छोटा भी प्रसाद को प्रसाद मानकर खाते, कहते हैं उससे ताकत आती है, शक्ति आती है। तो हमको तो बाबा इतना बड़ा ब्रह्मा भोजन खिलाता, हमारा प्रसाद तो थाली भर के होता है नहीं होता है तो कितना हम लोग ताकत वाले होने चाहिए। यहाँ मधुबन में आके तो सब ताकत वाले बन गए ना, रोज ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं। भट्टी में आए हैं तो भट्टी में आकर क्या कर रहे हैं? शुद्ध पवित्र भोजन मिलता है तो आत्मा भी शुद्ध और शरीर भी शुद्ध बन जाता है। भाई शरीर भी शुद्ध बनता है ना शुद्ध भोजन खा करके, और जितना शरीर शुद्ध बनेगा उतना मन भी शुद्ध बनता जाएगा। तो भोजन के ऊपर भी विशेष हमारा अटेंशन होना चाहिए कि हम बाबा की याद में बनाएं, बाबा की याद में खाएं और बाबा को खिला करके खाएं। ये भी हमारी एक मर्यादा है और एक ये नियम है। इस नियम को भी हमको अपने जीवन में पालन करना चाहिए। और विशेष संघ का भी असर होता है, कहते हैं ना जैसा संघ होता है वैसा रंग होता है। अभी बाबा के घर में भी वैरायटी प्रकार के बच्चे होते हैं, कोई अच्छे पुरुषार्थी होते हैं और कोई मध्यम पुरुषार्थी होते हैं, कोई कनिष्ठ पुरुषार्थी भी होते हैं, कोई तीव्र पुरुषार्थी होते हैं, कोई गुप्त पुरुषार्थी। तो जैसे का हम संग करते वैसा हमारा रंग होता है। कोई योगी होता है तो आप योगी का संग करेंगे तो आपको योग का असर होगा। हाँ, कोई ज्ञानी होता है तो ज्ञानी का करते हैं तो उससे ज्ञान का असर होता है। तो जैसा संग हमारा होगा वैसा असर होगा। तो हमें विशेष संग के ऊपर भी हमें विशेष अटेंशन रखना है कि हमारा संग कैसा, ज्ञानी योगी आत्माओं का संग होना चाहिए, जिससे हमारी आत्मा की उन्नति सदैव होती रहे। तो जीवन के अंदर हमें मर्यादाओं को भी पालन करते हुए हम चलेंगे तो हमारा जीवन भी मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएगा। क्योंकि बाबा ने हम सबकी लाइफ इतनी स्मूथ कर दी है। ये भी नियम मर्यादाएं जो भी हैं हमारे, बाबा ने हमको जो दिए हैं वो इतने सहज दिए हैं, जो हम पालन न कर सके ऐसा नहीं है, है? सहज रीति से हम अपने जीवन के अंदर पालन कर सकते हैं। और इसीलिए बाबा ने हर बात को सहज कर दिया है, सहज ज्ञान दिया, सहज योग सिखाया, सहज मर्यादाएं सिखाई। अभी मर्यादाएं ऐसी कोई मुश्किल तो बात है ही नहीं, सहज रीति से बाबा हम बच्चों को सहज करके सिखा रहा है और हम बच्चे भी सहज रीति से चल रहे हैं। जैसे बाबा कह रहा है उसको उसी अनुसार अगर हम करते हुए चलेंगे तो सहज रहेगा। अगर उसी श्रीमत के अंदर हमने अपनी मनमति मिक्स की या किसी और की मत मिक्स की तो वो क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो बाबा की श्रीमत जो है उस अनुसार हम जितना चलेंगे उतना हमें सहज होगा। मुश्किल तब होता है जब औरों की मत को हम मिक्स करते हैं। बाबा ने जो हमको सहज करके दिया, बाबा ने जो मत दी वो समझा होगा ना बाबा ने कि मेरे बच्चे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ऐसी सहज विधि बाबा ने दी है और उस सहज विधि को हम सहज रीति से करते हुए चलेंगे तो हमारे जीवन का पुरुषार्थ सहज होता जाएगा और सहज रीति से चलते जाएंगे। यही तो हम ब्राह्मण जीवन की खुशी है, मर्यादा है, प्राप्ति है, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को कितनी प्राप्ति कराई थी, कितना सहज रीति से बाबा पढ़ा रहा है, बाबा हमारी पालना कर रहा है, बाबा हमें इतनी प्रकार की प्राप्तियां करा रहा है। क्या दिया बाबा ने? तीन बातें दी ना, पढ़ाई दी, पालना दी और प्राप्ति कराई। पढ़ाई भी सहज है और पालना बाबा हम बच्चों की कितनी अच्छी तरह से, देखो बाबा हम बच्चों की पालना कर रहा है और प्राप्ति कितनी करा रहा है। इतनी प्राप्ति हम सबको, प्राप्ति न होती तो हम ब्राह्मण नहीं बनते, प्राप्ति हुई है तब ब्राह्मण बने, और ब्राह्मण बने हैं तब हम बाबा के पास आए हैं। अगर ब्राह्मण न बनते तो आप सभी भट्टी में आते हैं? सभी भट्टी में आए ना, तो भट्टी में आकर के क्या किया? भट्टी में इसलिए आते भाई, भट्टी में सुना है ना पहले दिन कि भट्टी में डालने से क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो आप सभी भी जो भी भट्टी में आए हैं वो सभी यहां से क्या होके जाएंगे, परिवर्तन। कितनी तपस्या कर रहे हैं और इस तपस्या से क्या दिखाई देगा, जीवन का परिवर्तन दिखाई दे। तो भट्टी में आप सभी आए हैं तो भट्टी में आप फुल भरपूर हो करके जाना। बाबा हम बच्चों को इतना भरपूर कर रहा है, प्राप्ति करा रहा है। ये गोल्डन चांस आप सबको मिला है। उस दिन ही मैंने कहा ना कि लॉटरी मिली है। अब जिनको लॉटरी मिलती है उनको कितनी खुशी होती है, आप सबको खुशी है उसकी है? लॉटरी की भट्टी में आना भी लॉटरी है, भट्टी में आना लॉटरी है, है? वो भी ज्ञान सरोवर में आप सबको मिली है, है? कितने भाग्यशाली हो, कितनी लंबी लिस्ट है ज्ञान सरोवर की भट्टी की है? तो उस लिस्ट में से आपका नंबर लगा है, है? तो आप इतने भाग्यशाली हो तो अपने भाग्य का सिमरन करते करते इस भट्टी के अंदर से अपने को फुल भरपूर करके जाना। और फिर वहां जाके क्या करेंगे? बाबा हमेशा कहते थे कि बच्चे बादल आते हैं बाप के पास भरने के लिए और भर करके जाते हैं, फिर क्या करते? एक होते हैं भरे हुए बादल, एक होते हैं खाली बादल, है? तो भरे हुए बादल जाकर क्या करते हैं? बरसते हैं। और खाली बादल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, है? जो बरसेंगे तो हरा भरा करेंगे और जो बरसेंगे नहीं तो हरा भरा होगा नहीं होगा। तो आप सभी भी बाबा के पास भट्टी में आए हैं, यहाँ से अपने को फुल भरपूर करके जाना और जा करके औरों को भी अपने अनुभव सुनाना, औरों को भी भरपूर करना, तब कहेंगे आपकी भट्टी सफल है। ठीक है? ओम शांति।